रेडियो मधुबन पर सबका स्वागत है। मैं लीना मेहंदड़े उपस्थित हूँ और हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का तीसरा पाठ।
लेकिन कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ। आपके मन में संस्कृत को लेकर के जो भी प्रश्न हो, समस्या हो, आप अवश्य हमें SMS भेजिए और पूछते चलिए। हमारा मोबाइल नंबर है 94-1415-1415। और हाँ, जब भी आप अपना SMS हमें भेजें तो अपने नाम के साथ साथ अपने गांव या शहर का नाम भी भेजना मत भूलिए।
आज सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहूँगी कि कई बार जब हम संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो डर लगता है कि इसमें तो बहुत रटना पड़ता है और ये देवाह देवो देवाह क्या चीज़ होती है। इसलिए आज के पाठ में मैं इसे समझाना चाहूँगी कि इस प्रकार थोड़ी सी रटाई कर लेने से क्या उपयोग या फायदा है।
तो मैं तुम्हें पढ़ाई का एक गुर, एक ट्रिक, एक तरीका बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई में ढेर सारी समझ और थोड़ी सी रटाई दोनों आवश्यक होते हैं। इसलिए पढ़ाई में पहली बात तो यह है कि रटाई से डरना छोड़ो और कोशिश करो कि ये रटाई क्या है उसे भी समझ लो, तो रटाई उतनी बुरी नहीं लगेगी, इतनी खलेगी नहीं। तीसरी बात कि किसी भी पढ़ाई को रटने के लिए उसे एक प्रकार से छंदबद्ध कर लो तो ये काम और भी सरल हो जाता है। अब आते हैं संस्कृत की रटने की बात पर। मैंने रट लिया देवाह देवौ देवाह, तो इसका क्या फायदा हुआ? तो ऐसा है कि संस्कृत भाषा का पूरा प्रबंध इस प्रकार किया हुआ है कि एक बात सीखो 100 बातें अपने आप आ जाती हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलर, यानी एक ही की तरह कई सारी। तो जब हम ये पंक्ति कहते हैं देवाह देवौ देवाह, तो तीन शब्द हैं। देवाह एक देव को बताता है, एक व्यक्ति को बताता है। देवौ दो व्यक्तियों का बोध कराता है और देवाह बहुवचन है, कई सारे देव, इसका ये बोध कराता है। तो देवाह देवौ देवाह ये पंक्ति रट लेने का एक फायदा ये है कि देव शब्द जो है वह संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग, ये उसकी श्रेणी या ये उसका वर्णन बताया जाता है। और इसी वर्णन के कई सारे शब्द हैं, पावकः, सूर्यः, रजकः, वृक्षः, दीपः। तो जैसे हम देवः देवौ देवाः कहते हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं दीपः दीपौ दीपाः, रजकः रजकौ रजकाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। तो एक देवाह देवौ देवाह को रट लेने से ऐसे कई जो सैकड़ों शब्द हैं जिनकी श्रेणी को हम अकारांत पुल्लिंग कह सकते हैं, उसमें फिर राम हो, गणेश हो, महेश हो, पावक हो, अनल हो, ये सब शब्द उसमें आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनका रूप भी बनेगा जैसे देव शब्द का रूप बनता है। ये सरलता है, ये आसानी है संस्कृत में। थोड़ा सा अगर हम समझ करके रट लें तो उसमें ये आसानी पड़ती है। एक देवाह देवौ देवाह ये एक पंक्ति तीन शब्द रट लेने से क्या होता है? तो राम अगर शब्द है तो राम का रूप भी वैसे ही बनेगा, रामः रामौ रामाः। अब आते हैं दूसरी बात पर। एक वाक्य हिंदी में समझो कि राम ने दीप को जलाया। यहाँ पर एक शब्द है ने और दूसरा शब्द है को, राम ने दीप को जलाया। इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि काम करने वाला कौन है? काम करने वाला राम है, इसलिए राम को हम कहेंगे कर्ता। और राम ने क्या काम किया? दीप को जलाया। तो किसको जलाया? दीप को जलाया। तो ये दीप शब्द कर्म की श्रेणी में अब आ गया और इस बात का बोध होता है उसके आगे जो शब्द लगा है को, उसके कारण। तो दीप को जलाया कह देने से दीप शब्द की श्रेणी जो है वो बदल करके कर्म की श्रेणी बन जाती है, वो कर्ता की श्रेणी नहीं रहेगी, जैसे कि राम जो है वो कर्ता है। इन अक्षरों को या इन शब्दों को हिंदी में हम विभक्ति कहते हैं। विभक्ति और विभक्ति की 7 श्रेणियां होती हैं। मैं जब स्कूल में थी तो ये 7 श्रेणियां मैंने कैसे पढ़ी थी या कैसे समझी थी या कैसे रटी थी, तो बहुत आसान था। कर्ता ने, यानी करता है तो आगे ने लगेगा, कर्म के लिए को लगेगा, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में या पर। तो इस तरह से ये 7 विभक्तियां हिंदी में हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग स्कूल में थे। और इन विभक्ति में बड़ी ताकत होती है। कहने को तो बड़े छोटे शब्द हैं, लेकिन बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि उससे पूरे वाक्य में अर्थ जो है वो समाहित हो जाता है। किसी वाक्य का अर्थ उसके विभक्ति के कारण स्पष्ट होता है। इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने कहा राम घर को चला गया और दूसरा वाक्य मैंने कहा राम घर से चला गया, तो देखा केवल अंतर इतना हुआ कि को की जगह मैंने से लगा दिया, और देखा तुमने कि वाक्य का अर्थ कितना बदल गया। तो जो ये विभक्ति शब्द होते हैं, इनमें ये बहुत बड़ी ताकत होती है कि शब्दों को वो मीनिंगफुल बनाते हैं, अर्थपूर्ण बनाते हैं, और वाक्य का अर्थ, उसमें वाक्य में वक्ता बताने वाला क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ये स्पष्ट हो जाता है विभक्ति के कारण। तो संस्कृत में विभक्तियां होती हैं। विभक्ति को समझाने के लिए अगली बार मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें SMS भेजते रहिए। नमस्कार।